नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। भारत और चीन के बीच जारी सीमा तनाव पर बात रखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में कहा, भारत अब कमजोर नहीं है। चीन भले ही भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानता हो, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में एक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने ब्रिटेन के दौरे पर कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पीएम मोदी ने काफी प्रयास किया। राजनाथ सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों से रूस यूक्रेन युद्ध 4 से 5 घंटे तक रुका रहा। लंदन में इंडिया हाउस में एक सामुदायिक स्वागत समारोह में राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन को भारत का प्रतिद्वंदी माना जाता है, लेकिन हम चीन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं। शायद चीन ऐसा मानता है, हम किसी को भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते। राजनाथ सिंह ने कहा कि 2020 में भारत और चीन के बीच आमना सामना हुआ और हमारे सुरक्षा बलों ने जो बहादुरी दिखाई, शायद यही कारण है कि चीन का भारत के प्रति नज़रिया बदला है। उन्हें एहसास हो गया है कि भारत अब कमज़ोर नहीं है। पहले हम रक्षा उपकरणों के आयातक सबसे बड़े हुआ करते थे, लेकिन अब जब रक्षा वस्तुओं के निर्यात की बात आती है तो हम शीर्ष 25 देशों में हैं। महाराष्ट्र की सियासत में इस समय बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आने के बाद अब एनसीपी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने अजित पवार गुट वाले एनसीपी विधायकों की अयोग्यता को लेकर स्पीकर राहुल नार्वेकर को याचिकाएं दी हैं। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में 31 जनवरी से पहले फैसला आ सकता है। सचिवालय की ओर से इस मामले में कार्यवाही तेज हो गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी के अजीत पवार और शरद पवार गुट को लेकर विधानसभा सचिवालय के रिकॉर्ड के मुताबिक कार्यवाही 6 जनवरी से शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 18 जनवरी से पहले एनसीपी के दोनों गुट गवाहों और हलफनामों के लिस्ट का आदान प्रदान करने वाले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनसीपी विधायकों की अयोग्यता को लेकर अंतिम सुनवाई 25 जनवरी से शुरू होगी और 27 जनवरी को समाप्त होगी। इसके बाद स्पीकर राहुल नार्वेकर इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी एनसीपी के मामले में स्पीकर को फैसला लेने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया है। अजीत गुट इस मामले को लेकर पहले ही चुनाव आयोग पहुंच चुका है। चुनाव आयोग को दी गई याचिका में अजीत पवार गुट की ओर से कहा गया कि अजीत पवार को एनसीपी के प्रमुख के तौर पर मान्यता दी गई है। चुनाव चिन्ह घड़ी भी अजीत पवार गुट को दिया गया है। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अजीत गुट का कहना है कि हमारा मामला शिवसेना गुट से अलग है। हमने जब एनडीए की बैठक में हिस्सा लिया तब हमारे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई, जबकि शिंदे गुट पर व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक है। एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपनी तैयारी तेज कर दी है, तो वहीं विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला ही नहीं सुलझ रहा है। इंडिया गठबंधन में विभिन्न राज्यों के लिए सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। बैठकों का दौर चल रहा है, नेताओं की मुलाकातें भी जारी हैं, लेकिन यूपी बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। बिहार में लालू यादव की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनता दल हो या नीतीश कुमार की पार्टी, जनता दल यूनाइटेड कोई भी सीटों के मामले में पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने अपनी लकीर खींच रखी है, तो महाराष्ट्र में शिवसेना UBT की भी अपनी ही मांग है। दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी पार्टी ने साफ कर दिया है कि गोवा, गुजरात और हरियाणा में भी सीटों को लेकर बात होगी। यूपी में अखिलेश यादव 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में JDU RJD भी 17-17 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं है। ममता भी बंगाल में 2 सीट से अधिक देने को तैयार नहीं है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा, गोवा और गुजरात में सीटों की डिमांड कर दी है। अब कांग्रेस अगर घटक दलों की डिमांड मान ले तो उसके पास बचेगा क्या? कांग्रेस ही नहीं, अन्य दल भी चाहते हैं कि 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से पहले लोकसभा सीटें बांट ली जाएं तो बेहतर हो। स्वच्छता सर्वे में इस साल महाराष्ट्र ने बाजी मार ली है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाली स्वच्छता सर्वे में महाराष्ट्र सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। बात अगर शहरों की करें तो MP का इंदौर और गुजरात का सूरत सबसे आगे है। इनके बाद नवी मुंबई को सबसे साफ शहर बताया गया है। इंदौर को 7वीं बार सबसे साफ शहर के खिताब से नवाजा गया है। इंदौर लगातार 7वें साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।